તારીખ 3/8/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 121
પત્ર 493 ચાલતા હે કલ કે સ્વાધ્યાય મેં આત્મા કરતા હે उस विषय पर सैद्धांतिक निरूपण ब्रह्मज्ञान योग के सिद्धांत अनुसार जो निरूपण है वो बात चली और अध्यात्म का सिद्धांत क्या है वो बात भी चली। उस विषय पर विजय भाई का एक प्रश्न आया है, मैं प्रश्न को सुनाता हूँ। गए काल के सत्संग में, कल के सत्संग में आत्मा करता है यह पद विस्तार पूर्वक समझाते हुए ऐसा दर्शाया बताया कि आत्मा में बोलने की शक्ति नहीं, मतलब कि वह ये जड़ की क्रिया है। सिद्धांत दृष्टि से यह बात सच्ची होगी, परंतु ज्ञानी पुरुष की प्रत्यक्ष वाणी के विषय में यह विधान बंद बैठता यानी ठीक नहीं लगता। जो वाणी के द्वारा मुमुक्षु जीव प्रथम स्वरूप वाद पामे से स्वरूप बोध प्राप्त करता है, जो वाणी मुमुक्षु जीव में चैतन्य का बल उत्पन्न कर सकती है, जो वाणी के अवलंबन के बिना मोक्ष मार्ग की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, उसे जड़ की क्रिया किस प्रकार से कह सकते। कदापि ज्ञानी और अज्ञानी की वाणी में यह मूलभूत फर्क होगा, आपका मंतव्य बताइए। अब क्या है कि जो बात सिद्धांतिक है वो द्रव्यानुयोग के आगम के अनुसार है और वो वस्तु का स्वरूप है। क्या है? ये वस्तु का स्वरूप है। अब जो वाणी ज्ञानी पुरुष की वाणी है जिसके कारण से मुमुक्षु जीव को अनुपम और अनंत लाभ होता है, और इसलिए ज्ञानी के वाणी को पूजनीय भी कही है, जड़ होते हुए भी पूजनीय कही है। ये बात रही अध्यात्म की। आगम की बात कुछ और है, अध्यात्म की बात कुछ और है। दोनों अलग अलग स्तर की बात है, इसमें विरोध नहीं है। आगम और अध्यात्म के अविरोध रूप से हमें स्वाध्याय करना चाहिए। विनय उपकार बुद्धि अपनी जगह पे है वो सही है, और वस्तु का स्वरूप अपनी जगह पे है वो भी सही है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, कोई विरोध नहीं है। एक ही मनुष्य पिता है अपने पुत्र का, वही मनुष्य पुत्र है अपने पिता का। पिता भी है पुत्र भी है, और दोनों एक ही समय में है, लेकिन अलग अलग स्तर की बात है, वो इसमें कोई विरोध नहीं है। वो व्यवहार है, निश्चय से किसी का कुछ नहीं है, निशेष है वो आत्मा, किसी का कुछ है ही नहीं। तो तीनों बात सही है और एक ही समय में तीनों बात है। उस तरह से द्रव्यानुयोग के सिद्धांत है वो अपनी जगह बराबर है और विनय उपकार बुद्धि अपनी जगह है वो भी बराबर है। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए और दोनों में विरोध भी नहीं होना चाहिए। उसी का नाम कोऑर्डिनेशन है, उसी का नाम संतुलन है, उसी का नाम सही अपेक्षा ज्ञान है। समय सार में चार नंबर का श्लोक है, कलश है, चौथा कलश है, उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहाः। उभय नय व्यवहार और निश्चय नहीं, उसका कथन परस्पर विरुद्ध दिखता है, लेकिन स्यात् पद लगाने से मैंने किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से ऐसा है, उसका विरोध ध्वंसिनी, उसका विरोध का ध्वंस मैंने नाश करने वाले कौन है? जिन वाणी है, जिन वचन। ऐसे जिन वचन में जिन वचसी रमनते, ऐसे जिन वचन में जो रमण करते हैं, लीन होते हैं, क्या करके? स्वयं वांत मोहा, स्वयं अपने आप मोह को वमन करके जो रमण करते हैं उसका निवेड़ा आ जाता है। तो इस तरह से स्वाध्याय करना है। और कोई प्रश्न हो इसमें बताइए।
वाणी तो क्या, जो समय दृष्टि बेल की जो खड़ी जो है जिस विस्तार में पड़ती है वो भी धन्य है।
वो तो है, उतना सम्यक दर्शन का महिमा है, सम्यक दर्शन उतना मूल्यवान है कि जो सिद्ध भगवान को है वही नीचे वो सम्यक दृष्टि बैल को है। और सम्यक दर्शन के अपेक्षा दोनों बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, इतनी महिमा है सम्यक दर्शन की। तो वो सम्यक दर्शन के निवास के साधन, निवास के स्थान रूप ये छह पद का पत्र चलता है, उसमें चौथा आत्मा करता है यानी क्रिया संपन्न है। छह द्रव्य क्रिया संपन्न है, तो द्रव्यानुयोग का सिद्धांत है। पहले तो द्रव्यानुयोग का सिद्धांत निरूपण किया है। आत्मा भी एक पदार्थ है इसलिए वो भी क्रिया संपन्न है और वो कुछ न कुछ परिणाम रूप क्रिया समेत ही देखने में आ रहा है। सभी पदार्थ, पुद्गल पदार्थ तो इंद्रिय ग्राह्य है, वो भी देखने में आ रहा है, उसका परिणमन भी चालू है। किसी पदार्थ के परिणमन को कोई भी रोक सकता नहीं, स्वयं परिणमनशील स्वभावी होने से स्वतः अपना अपने आप उसका परिणमन रूप क्रिया चलती रहती है। इसलिए उसको चालू करने का भी सवाल नहीं, न बंद करने का सवाल है, क्रिया चालू करने का भी सवाल नहीं। जैसे मशीन को हैंडल मारे तो चालू होवे या चाबी लगावे तो चालू होवे, डूब करके गाड़ी थी ना, पहले हैंडल लगाते थे, अब इग्निशन की आ गई, ऐसा नहीं है इधर, ये तो चालू ही रहता है, निरंतर परिणमन होता रहता है बहुत तेजी से। सर्व पदार्थ ऐसे देखने में आते हैं, सारा विश्व परिवर्तनशील देखने में आ रहा है, इसलिए अखबार में हमेशा हमेशा जो भी बात परिणमन की हुई वो आती रहती है, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। आत्मा भी क्रिया संपन्न है, क्रिया संपन्न होने से वो करता है, क्रिया उसका कार्य है और खुद इसका करता है। इसलिए वो करता है, क्रिया संपन्नता होने के कारण से आत्मा करता है। यह कर्ता तीन प्रकार से श्री जिनदेव ने विवेचन किया है, यानी विस्तार किया है, वहाँ अध्यात्म लिया है। यहाँ तक तो द्रव्यानुयोग का आगम लिया, तो उसमें दृष्टांत चला था कि रोबोट हो या कंप्यूटर हो या हम वाणी बोलते हैं, वो वाणी बोलने वाला टीवी हो या टेप रिकॉर्डर हो या अपने निमित्त से वाणी चलती हो, कोई भी वाणी हो, वाणी जड़ है। जड़ चेतन में कुछ करती है वो द्रव्यानुयोग का सिद्धांत में तो नहीं है, फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध में आत्मा में अन्य पदार्थ के संस्कार झेलने का एक धर्म है, गुण नहीं है। वो क्या है गुण? ऐसा है कि किसी का संस्कार को नहीं झेले, और धर्म ऐसा है कि कुछ न कुछ संस्कार को, संयोग के संस्कार को झेले। पर्याय धर्म है, वो द्रव्य का धर्म है, स्वभाव धर्म है, और दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही पदार्थ में, एक ही सत्ता में। चूंकि द्रव्य अपरिवर्तनशील है और पर्याय परिवर्तनशील है, जब दोनों का परिणमन स्वभाव विरुद्ध है, एक परिणामी है एक अपरिणामी है, तो दोनों का धर्म भी अलग अलग है। द्रव्य स्वभाव किसी का संस्कार नहीं लेता, ध्रुव रहता है यूं का यूं, जबकि पर्याय दूसरे का संस्कार लिए बिना नहीं रहती, और इसी से संसार चला है। तो जब पर्याय संस्कार झेलने का धर्म वाली है, तो ज्ञानियों ने इस विज्ञान का सदुपयोग किया कि चलो जब ये दुनियादारी में संस्कार पंचेंद्रिय के विषय का झेल करके मलिनता को प्राप्त करता है, परिणाम वही परिणाम फिर ज्ञानी की वाणी या जिनेन्द्र दर्शन आदि कोई भी बाह्य जो निमित्त है उसका संस्कार झेल करके पवित्र भी हो सकता है। जो बाह्य कारण से मलिन होता है तो बाह्य कारण से पवित्र भी होगा, सामने पवित्र निमित्त चाहिए। तो जिनेन्द्र देव भी पवित्र है, इसकी वाणी भी पवित्र है, तो पवित्रता का संस्कार रहेगा इसमें। लेकिन वो बात रही निमित्त नैमित्तिक संबंध की, कर्ता कर्म संबंध की तो नहीं है, ये ख्याल रखने का है। कर्ता कर्म संबंध अगर मानेंगे तो हम गुरु को एक ऐसा कहेंगे कि हमारा कल्याण आप कर दो, हम तो कुछ करने को समर्थ नहीं है, बहुत कमजोर है, कुछ हम कर सकते नहीं, आप थोड़ा हमारा कल्याण कर दो। कर्ता कर्म वाली बात हो गई, ऐसा तो कोई वस्तु का स्वरूप में है ही नहीं। गुरु प्रेरणा देते हैं कि नहीं देते हैं, और परिणाम में बल देते हैं कि नहीं देते हैं, विनय से सब कुछ कहते हैं। वस्तु के स्वरूप में वो बात, प्रेरणा कोई लेता है तो कहते हैं कि दिया, वो तो प्रभु ये आपियो और तू चरणाधीन आत्मा आचो। वो बात रही अध्यात्म की, रही विनय की, रही और अध्यात्म की रही, आगम में वो बात नहीं है।
तो क्या करना, आगम लेना क्या अध्यात्म लेना?
आगम जानने का विषय है और अध्यात्म परिणमन करने का विषय है, ठीक है। आगम की जानकारी कर लेना, जानकारी करके उसको बगल में रख देना। देखिए तो प्रश्न निकला ही है, तो इसका एक अच्छा स्पष्टीकरण है। स्वाध्याय में दोनों बात आएगी, आगम की भी आएगी और अध्यात्म की भी आएगी। पहले आगम से निरूपण किया कृपालु देव ने, के पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न है, इसलिए आत्मा भी परिणमन वाला दिखने में आता है, इसलिए वो क्रिया का कर्ता आत्मा ही है। सब बात तो द्रव्यान योग की भी बाद में अध्यात्म कहेंगे। तो कौन सी बात अमलीकरण में ले जाने की है, यानी आदरणीय योग्य है, और कौन सी बात जान करके साइड के दूसरे खाते में रखने की है। दो खाता रखना, एक जानकारी वाला और एक आदर करने वाला, अमलीकरण करने वाला, एक उपासना का।
जानकारी नहीं चाहिए,
जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है मत करो। स्वाध्याय में तो बात आएगी, और आत्मा जो है जानने का स्वभाव वाला हो तो जान लेगा भी। आपका वजन नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन जानने का तो हो ही जाएगा। हम ज्ञान को तो ना दे सकते, नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए क्या? जिसको ज्ञान नहीं चाहिए उसको आत्मा नहीं चाहिए, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है। इसलिए जानकारी हो जाएगी तो उसको जानने वाले खाते में रख देना, और उपासना का जो खाता है उसको उपासना के खाते में ले जाना। दो खाता रख लेना हमेशा, पर ये विवेक हमको स्वयं को करना है कि किसको जानकारी में रखे, किसको उपासना में रखे। अगर उतना विवेक नहीं हो तो सत्संग में वो विवेक प्राप्त हो सकता है। सत्संग इसके लिए ही है कि कोई भूल हो जाए, जानकारी वाली उपासना में आ जाए, उपासना वाला जानकारी में हो जाए, तो रॉन्ग पोस्टिंग एंट्री का हो जाएगा, डबल नुकसान होएगा। कितना नुकसान होता है? डबल होता है। वो तो अकाउंट जानते हो, जानते होंगे कैसे डबल होता है नुकसान। इस तरह से सत्संग उपकारी है। आगे एक जगह उपानुदेव के वचनामृत में ऐसी बात आई है, 14 गुण स्थान जानने की बात है। क्या ये 14 गुण स्थान है वो जानने की बात है? आगे बहुत स्पष्टीकरण नहीं दिया है। मुमुक्षु ने हमको पूछा कि ऐसा क्यों लिखा है, 14 गुण स्थान जानने की बात है। 14 गुण स्थान तो उपासना का होता है, जानने की बात क्यों लिखा है इधर? प्रश्न तो आता है ना। हमने कहा कि देखो, 14 गुण स्थान में अभी 13वां 14वां गुण स्थान वाले तो कोई इधर है ही नहीं, 2500 साल से उसका तो जमाना चला गया है। 6वें 7वें गुण स्थान वाले भी सैकड़ों साल से देखने में नहीं आ रहे हैं। तो बात रही सत्पुरुष की, जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, पंचम गुण स्थान वर्ती हो सकते हैं, तो तीनों में जो संस्कार झेलने का निमित्तत्व है वो तो एक सा है, इसमें 14 भेद नहीं है। इसलिए हमारा मतलब तो संस्कार झेलने का है। उनकी वाणी में से या उसका प्रत्यक्ष परिचय से हमको तो मोक्ष मार्ग चाहिए, तो उसके लिए हम गुणस्थान की गिनती करेंगे कि ये तो 4थे गुणस्थान वाले हैं, और 4था गुणस्थान वाले का नाम आगम में अच्छा नहीं रखा है। अविरत सम्यक दृष्टि, क्या उसका नाम जो 14 गुणस्थान का नाम होता है वो अनादि से ऐसा ही नाम है, तो उसमें कोई फेरफार नहीं करते। चतुर्थ गुणस्थान वाले का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। तो अविरत मैंने जिसको कोई त्याग नहीं हो, ऐसा सम्यक दृष्टि। तो त्याग होना तो गुण है और नहीं होना अवगुण है। तो सम्यक दृष्टि का विशेषण अवगुण वाचक क्यों? ठीक बहुत चर्चाएं हमारे यहां चलती है सब, कि देखो ये बात आगम की जानने की रही, उसको रख दो जानने में, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण आगम में आता है कि पंचम गुण स्थान में देश विरत होता है, सत्य गुण स्थान में सर्ववीरतिपना होता है, उसकी अपेक्षा से यहाँ वो बात चली है, ऊपर वाले के गुण स्थान की अपेक्षा। लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको तो उनकी वाणी और उनके परिचय से संबंध है, इसका संस्कार हम लेंगे तो हमारे लिए तो परमेश्वर वत है, क्योंकि जिनेंद्र से जो बात होती है वो बात इनसे होती है, जिनेंद्र और उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा सत्पुरुष का चरण सानिध्य को विनय पूर्वक विनयोपासना, इसके बल से अपना आत्म कल्याण होगा, वो आदरने के खाते में लेना है और 14 गुण स्थान को जानने के खाते में खता लेना, तो जानने का विषय है, आदरने का विषय तो वो है। अभी इस तरह से इस अपेक्षा से वो बात चली है, वरना बड़े बड़े पंडित लोग जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि 13 गुण स्थान वाले अरिहंत परमात्मा जिनेन्द्र सर्वज्ञ देव, उसकी भक्ति को पूरी पूरी करो, क्योंकि वो पूर्ण हुए हैं और निराज हो गए 6-7 गुण स्थान वाले निर्ग्रंथ गुरु, तो उसकी भक्ति उसके पैमाने में करो, क्योंकि उसके गुणस्थान कम है, और अविरत सम्यक दृष्टि की तो भक्ति करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो तो अविरति का टाइटल लगा है, वहाँ विशेषण लगा है, फिर भी थोड़ा बहुत उपकार हो तो थोड़ी कर लेना, लेकिन बैलेंस रखना, वरना मिथ्यात्व तो हो जाएगा। क्या कहेगा, ज्यादा भक्ति करोगे ना तो मिथ्यात्व तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुरु और परम गुरु अर्जुन देव की अवमानना हो जाएगी, तो विवेक रखना, क्या भक्ति करने में थोड़ा विवेक रखना। इसलिए तीनों की भक्ति में तराजू लेकर के तोल माप करके जोक करके भक्ति को लगाना, वरना आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। उद्देश्य चलता है आजकल तो ये गड़बड़ है, सब ऐसा होना चाहिए नहीं। तोल माप से होती नहीं है, लेकिन भगवान को अर्घ चढ़ाना, साधु महाराज को अर्घ चढ़ाना, लेकिन सम्यक दृष्टि को चढ़ाना नहीं। ऐसे बात तो बहुत व्यवस्थित चलती है, कैसे तोल माप करना वो भी बताते हैं वो लोग। कृपालु देव कहते हैं 223 में कि नमस्कार से लेकर के पराभक्ति की सर्व प्रकार की भक्ति करने योग्य ऐसा देहधारी परमात्मा सत्पुरुष उसकी सर्व प्रकार से भक्ति करने योग्य है। जा कार्तिक अनुप्रेक्षा में आया है वो बात, तो वो लोग तो क्या है कि कृपालु देव को तो माने नहीं, हमारे आगम में कहाँ है, दिगंबरों के आगम में कहाँ है, तो कार्तिक अनुप्रेक्षा में से दिखाया, देखो यहाँ लिखा है, वहाँ पंचम गुण स्थान वाले की बात चली है, उसमें आहार दान का एक प्रकार चला है, 4 प्रकार के दान के वर्णन चला है, 4 प्रकार का दान श्रावक देता है पंचम गुण स्थान वाले, तो दान देने योग्य जो पात्र है उसका प्रकरण चला, के पात्र 3 प्रकार के हैं, जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट, तो मुनिराज सर्वोत्कृष्ट पात्र है, पंचम गुण स्थान वाला मध्यम पात्र है और सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र है। तीनों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान या 4 प्रकार का दान देना, बात तो ये आई कि इसको भी नवधा भक्ति करना, उसकी भी नवधा, उसमें ये नहीं कहा उत्कृष्ट पात्र है उसको ज्यादा भक्ति 9 भक्ति करना, मध्यम पात्र वाले को 6 भक्ति करना और जघन्य पात्र वाले को 1-2 भक्ति करना, इससे ज्यादा मत करना, ऐसा तो नहीं आया वहां आगम में, वो भी आगम है, कार्तिकेय स्वामी बहुत पुराना शास्त्र लिखने वाले हैं, तो समर्थ आचार्य है और सर्वमान्य आचार्य है, तो वो बात चली है वहां आगम में भी वो बात निकलती है, नहीं निकलती है वो बात नहीं है, लेकिन इतना ख्याल नहीं होता है, आगम पढ़ने वाले को भी इतना ध्यान नहीं रहता। चलो ये बात तो हुई, कर्ता पने की बात हुई। अब कहते हैं कि परमार्थ से देखा जाए तो, यानी आत्मा के मूल स्वरूप से देखा जाए तो, स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो, स्वभाव परिणति से निज स्वरूप का कर्ता है। स्वभाव कैसा है कि स्वभाव रूप परिणति करना वैसा ही स्वभाव है, विभाव रूप परिणति करना ऐसा स्वभाव नहीं है। कहा था आत्मा में अनंत गुण में से एक गुण भी ऐसा नहीं है जो विभाव या विकार को उत्पन्न कर दे। इसलिए स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा निज स्वरूप का कर्ता है, और ये स्वभाव परिणति को कहने में आता है। जिस क्रिया का वो करता है वो स्वभाव परिणति है। वो बात ली अध्यात्म की। अब नए ज्ञान की बात लेते हैं। अनुपचरित व्यवहार नहीं से आत्मा द्रव कर्म का करता है, तो पीछे वो बात मोक्ष पद में कुछ बात लेना है इसलिए यहाँ प्रयोग किया है। बहुत व्यवस्थित निरूपण है। मैंने द्रव कर्म ऐसा है कि आत्मा विभाव रूप परिणमन करे और उसको द्रव कर्म का बंध नहीं हो, ऐसा कभी बनता नहीं है। नियम से द्रव कर्म जड़ है और जड़ के परिणाम जड़ करते हैं, जड़ के परिणाम आत्मा चेतन नहीं करता। जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव, कोई कोई पढ़ते नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। फिर भी निमित नैमितिक संबंध ऐसा है जो त्रिकाल कोई भी संसारी जीव कभी भी जैसा जैसा विकारी परिणाम करेगा उस प्रकार का कर्म मन उसी वक्त उसको होगा होगा और होगा। वो नियम अबाधित होने से उसको अनुपचरित व्यवहार कहा, और उपचरित व्यवहार से घर नगर आदि का करता है। मैंने घर नगर का करने का विजय भाव आए बने भी नहीं भी बने, बनता है तो कैसे कि उसने मिस्त्री ने घर बनाया, नहीं बनता है तो भाई कैसे करे, बनने के बनने योग्य नहीं होगा तो नहीं बना। वो तो दूर क्षेत्रवर्ती और नियमबद्ध बात नहीं होने से उसको उपचार कहने में आया है। जब होता है तब ये कर्तापना का कल स्वाध्याय चला था। अब कहते हैं कि आत्मा भोक्ता है। नियम ऐसा है कि जो करता है वो भोक्ता होता ही है, क्योंकि क्रिया निष्फल होती नहीं, कोई परिणाम निष्फल हो ही नहीं सकता। जो कुछ क्रिया है वो सर्व सफल है, निरर्थक नहीं है, कोई क्रिया निरर्थक नहीं है। जो कुछ भी करने में आए इसका फल भोगने में आए ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव देखने में आता है। इसका दृष्टांत लेते हैं कि जहर खाना से खाने से इसका फल आता है, शक्कर खाने से इसका फल आता है, जाता है नहीं। जिसको शुगर कम हो जाती है तो खिला देते हैं, शुगर डाउन होने से उसको शक्कर खिलाते तो उसका फल आता है, कोई जहर खाता है तो इसका फल आता है, अग्नि स्पर्श से अग्नि पर जलने का फल आता है, और हिम स्पर्श से हिम स्पर्श का फल हुए बिना रहता नहीं। ये सबको प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है, दूसरा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। वैसे हम सिद्धांत कहते हैं, ठीक उसी प्रकार कषायादि यहाँ तक चला था, अब यहाँ से आगे लेते हैं। कषायादि या अकषायादि जो कुछ भी परिणाम रूप आत्मा प्रवृत्ति करता है, प्रवर्तता है, उसका फल भी होने योग्य ही है। कषाय का फल भी होएगा और अकषाय का फल भी होएगा। कोई जीव कषाय करे और इसका फल नहीं मिले ऐसा कभी बनने वाला नहीं है। द्रव्य कर्म तो उसे बन जाता है पर उसका विपाक भी आता है जिसको आत्मा भोगता है। आत्मा प्रवर्ते उसका फल होने योग्य ही है और यह होता ही है। वह क्रिया का आत्मा कर्ता होने से भोगता है, वो क्रिया का वो कर्ता परिणाम क्रिया का कर्ता होने से उसका भोगता भी है। कोई परिणाम के भोगता को नहीं समझे तो उसको कर्म का भोगवटा बताने में आता है। संप्रदाय में ऐसा बन जाता है, संप्रदाय बुद्धि से ये बहुत विचारणीय विषय है, विचार करने योग्य बात है कि ज्ञानी संप्रदाय बुद्धि वाले होते नहीं, इसलिए संप्रदाय से अलग पड़ जाते हैं और संप्रदाय में इसका विरोध चालू होता है। कृपालुदेव का भी हुआ है, गुरुदेव का भी हुआ है, ये होता ही है। अब क्या होता है कि जीव जाने अनजाने में इस माहौल में अभिनय और विरोध करना चालू कर देता है। पर सब करते हैं तो उनको ये परिणाम सामान्य लगता है, क्योंकि बहुत लोग करते हैं, लेकिन इसका इतना बड़ा अपराध है वो परिणाम में नहीं देखा जाता है, देख नहीं सकता है उसको, उसके फल से समझाया जाता है। देखिए ऐसा विरोध करने का फल निगोद होता है। क्या होता है? क्रोध से विरोध करोगे तो वाया नरक निगोद में जाओगे। दो प्रकार से विरोध होता है, कोई क्रोध से डट करके विरोध करता है वो पहले नरक में जाता है फिर निगोद में जाएगा, पर कोई मायाचार से विरोध करता है, सीधा विरोध बोलेगा नहीं अपने मुंह से लेकिन दूसरे दूसरे को हिलाएगा, पर्दे के पीछे रह करके सारी पॉलिटिक्स राजनीति खेलेगा, वो सीधा निगोद में जाएगा। तो इसका फल बहुत खराब है, इसका जो फल है वो बहुत खराब है, लेकिन परिणाम में वो सामान्यपना दिखता है। तो वो कितना बड़ा पाप है वो जो अपने भाव से नहीं समझता है उसको इसके द्रव्य से समझाया जाता है। जो भाव को नहीं पकड़ सकते, भाव की गंभीरता को नहीं पकड़ सकते, उसको इसके फल से समझाया जाता है, क्योंकि स्थूल है, भाव सूक्ष्म है और इसका फल है वो स्थूल है। इस तरह से जो क्रिया का आत्मा करता होता है इसका भोगता होता ही है, उसका फल उसको भोगना पड़ता है, उसकी आकुलता, उसका दुख, उसका भोग्य स्थान, उसमें जाना होगा। इस तरह से आत्मा भोगता है और आत्मा में शक्तियां है, उसमें कर्ता शक्ति भी है और भोक्ता शक्ति भी है, दोनों शक्ति है। स्वभाव से स्वभाव परिणाम का कर्ता है और स्वभाव से आनंद का भोक्ता है और वही परिणाम का विकृत परिणाम विभाव हो जाएगा तो ये राग का और परद्रव्य का कर्तापना का अनुभव करेगा। और विभाव में दुख का अनुभव करेगा। इस तरह से स्वभाव परिणाम क्या है, विभाव परिणाम क्या है, इसका कर्ता भोक्तापना क्या है, तो सम्यक दर्शन के पाने में प्रयोजन भूत होने से प्रयोजन भूत बात तो समझ लेना चाहिए, प्रयोजन भूत बात तो समझना, फिर वो उपासना की है और समझने के लिए प्रयोजन भूत है, आदर समझने के खाते में रखना है, वो बाद की बात है, सेकेंडरी बात है। प्राइमरी जिस जिस विषय में हमारा असमाधान चलता हो उसका समाधान सत्संग में कर लेना चाहिए, जब भी परिणाम स्थिर होगा, वरना परिणाम का क्षोभ विक्षेप मिट सकता नहीं है। ये चौथा पद हुआ। पांचवा पद मोक्ष पद है, पांचवा मोक्ष का पद लिया है। जो अनुपचरित व्यवहार से, यहां तो अनुपचरित व्यवहार क्यों लिया, जो अनुपचरित व्यवहार से, आगे इसलिए अनुपचरित व्यवहार की बात किया था कि वो भी बात को हमको दोहराना पड़ेगा। जीव को कर्म का कर्तापना निरूपण किया ऊपर, कर्तापने में जो बात आई, और कर्तापना होने से भोक्तापना भी निरूपण किया तीजा चौथा पद में। जब बात ऐसी है कि नए कर्म आते हैं और उसका भोगना भी होता है, तो वो चले जाते हैं कि निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। यह कर्म का नाश होना पना भी है, तो जब नया पैदा होता है तो नाश भी होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कषायादि का तीव्रपना होवे फिर भी उसके अनभ्यास से, उसके अपरिचय से और उसको उपशम करने से उसका मंदपना दिखने में आता है और वह क्षीण होने योग्य दिखता है, क्षीण हो सकता है, क्षीण हो सकता है। यह पूर्ण विराम है, क्या कहा, ये कर्म क्यों नाश होने योग्य है, इसका लॉजिक दे रहे हैं कि प्रत्यक्ष कषाय आदि का तीव्रपना होने से, तीव्र कषाय तो सबको समझ में आता है, मंद कषाय इससे थोड़ा सूक्ष्म है और तीव्र कषाय तो स्थूल है, तो सब पकड़ सकते हैं। मुझे क्रोध हुआ, तीव्र भाव होता है तो तीव्र कषाय पकड़ने में आ जाता है। उसके अनभ्यास से, अनभ्यास माने क्या, अभ्यास मैंने प्रैक्टिस, अनभ्यास मैंने उल्टी प्रैक्टिस, बार बार कषाय परिणाम का होना, तीव्र कषाय के परिणाम होना, ये उल्टी प्रैक्टिस है, और सुल्टी प्रैक्टिस से वो नहीं हो ऐसा बन सकता है। उसके अपरिचय से, अपरिचय मैंने क्या, उसमें रस लेना नहीं, उसको अपरिचय कहते हैं, और रस लेना उसको परिचय कहते हैं। परिचय मतलब क्या, जिसका अनुभव होता है और उसमें रस आता है वो इसका परिचय है, और जिसका अनुभव होवे और रस नहीं आवे वो इसका अपरिचय है। ऐसे ऐसे शब्द रखे हैं, उसके अनभ्यास से, उसके अपरिचय से और उसके उपशम करने से, शांत करने से, कषाय को शांत भी करने में आता है, इसमें दो प्रकार है, सम्यक प्रकार भी है और असम्यक कृत्रिम प्रकार भी है, सहज भी है और कृत्रिम भी है। उसका उपशम करने से उसका मंदपणा दिखने में आता है। जो कषाय तीव्र है उस कषाय का मंदपणा भी दिखने में आता है। जब मंदपणा दिखने में आता है तो क्षीण होने योग्य भी दिखने में आता है। जो बुखार 105 डिग्री था उसको इंजेक्शन दे करके 100 डिग्री में लाए तो 98 कर सकते हैं नॉर्मल उसको। हाँ वो हटे नहीं है तो बात अलग है, जो हटता है तो पूरा हटाएंगे। क्या लॉजिक है इसके पीछे? जब कोई चीज हटती है तो उसको पूरा हटाएं, क्यों नहीं पूरा हटा सकते? क्योंकि वो हटने योग्य तो है ही, इसलिए वो क्षीण होने योग्य दिखता है। क्षीण हो सकता भी है, वो क्षीण हो सकता भी है। वे बंधभाव क्षीण हो सकने योग्य होने से इससे रहित ऐसा जो शुद्धात्म स्वभाव उस रूप मोक्ष पद है। मोक्ष पद कैसा है? मोक्ष पद कोई वैकुंठवास नहीं है, हाँ कोई स्वर्ग आदि नहीं है, वो कोई मोक्ष पद नहीं है कि जहां बस आराम हो चैन हो, ऐसी बात नहीं है। ये बंध भाव का अभाव उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष है वो सापेक्ष है। किससे सापेक्ष है? बंध से सापेक्ष है। बंध का अभाव इसका नाम मोक्ष। इसलिए त्रिकाली आत्मस्वरूप को मोक्ष का विशेषण लागू होता नहीं है क्योंकि उसमें तो न बंध है न मोक्ष है, अबद्ध स्पर्श स्वभाव है। आकर्म बंधा हुआ भी नहीं और उसके कोई स्पर्शना भी नहीं। अब यहां वो तो बात दृढ़ दृष्टि का विषयभूत स्वभाव है, इसकी बात है। यहां ये चर्चा नहीं है, यहां तो पर्याय की चर्चा है। जो पर्याय में बंध परिणाम होते थे, परद्रव्य के साथ संबंध वाले चिकने परिणाम होते थे, उसका अभाव हुआ उसका नाम मोक्ष। उसमें पहले रुखापन आता है फिर उसका अभाव हो जाता है, उसी को मोक्ष कहने में आता है। तो बंध भाव क्षीण होने सकते हो, क्षीण हो सकने योग्य होने से उससे रहित, मैंने बंध भाव से रहित नास्ति से लिया और अस्ति से बंध भाव से रहित ऐसा जो शुद्ध आत्म स्वभाव बंध भाव से रहित जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ? जैसा शुद्ध आत्मा का स्वभाव है वैसा परिणाम हो गया। आत्मा स्वभाव रूप परिणमन करने लगा, पूर्ण शुद्ध हो गया पर्याय में, उसको मोक्ष पद कहने में आया है। जिसका लक्ष्य होता है, जिसका ध्येय होता है वो ऐसा होता है। क्योंकि ध्येय और आदर्श कभी अधूरा होता नहीं है, वो तो पूरा पूरा ही होता है। शुद्धिकरण पर्याय में होता है क्योंकि अशुद्धि की मर्यादा, अशुद्धि की सीमा पर्याय तक है, स्वभाव तक नहीं है। आत्मा जो शुद्ध स्वभाव है उसमें कोई काली माँ नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, कोई बंधभाव नहीं है, कोई विकार नहीं है, विभाव नहीं है, और हो सकता भी नहीं है। अगर होवे तो त्रिकाली स्वरूप ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, मिटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो त्रिकाली स्वरूप है, मूल सत्व है। जैसे एक दृष्टांत ले लें, पानी में मिट्टी होती है, ये पानी गिरता है ना, अभी मानसून में अभी पानी ऊपर से आता है बादल में से, नीचे पानी जमीन पर मैला होता है, पानी मैला हुआ है क्या? पानी में मिट्टी का संयोग हुआ है। जब पानी मैला देखा जाता है तब भी पानी का स्वरूप जिसके ज्ञान में है तो पानी का शुद्धिकरण का प्रयोग करके पानी को निर्मल करके पिएगा। अगर पानी मैला हो जाता तो उसका निर्मल करने का प्रश्न नहीं होता। तो जब पानी मैला है तब भी निर्मल देखने में आता है ज्ञान में, तब शुद्धिकरण की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। जब पानी का निर्मल स्वरूप ज्ञान में नहीं है, अभी तो मैला है ने, अभी तो मैला है ने, तो उसको निर्मल कर सकेगा नहीं। तो समय सार में बहुत अच्छा दृष्टांत दिया इसका, अपने हाथ से कथकफल, कथकफल हिंदी में बोलते हैं उसको, है फिटकरी, आपके फटकड़ी कही है, वो लोग फिटकरी कहते हैं, फिटकरी डालने से पानी निर्मल हो जाता है।
अपने हाथ से डाला है,
अपने हाथ से डाला, दूसरे को डलवाया नहीं। ऐसे
नीचे बैठ जाता है,
हाँ, तो उसको कहते हैं उपशम हो गया, बैठ जाता है तो उपशम हो गया मैलापन। वैसे ज्ञानी मुमुक्षु ज्ञानी होता है तो विवेक रूपी फिटकरी डालता है इसमें, क्या जब वो संसार अवस्था में कषायादि परिणाम होता है तो आत्मा पूरा मेला नहीं हुआ है, अवस्था में मलिनता हुई है, लेकिन आत्मा स्वरूप से स्तुति रहा है। अपने हाथ से मैंने अपने पुरुषार्थ से विवेक रूपी फिटकरी डालता है, ज्ञान को साधन बनाता है, तो आत्मा निर्मल हो जाता है। हो सकता भी है, और पूर्ण शुद्ध होता है उसको मोक्ष कहने में आया है, उसी का नाम मोक्ष है। जब मोक्ष होता है तो फिर संसार के चारों गतियों का, किसी भी प्रकार का दुख, उपाधि, टेंशन आदि व्याधि कुछ भोगने का सवाल पैदा नहीं होता, सर्व दुख से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से भी मुक्त हो जाता है। उसका स्वरूप है मूल स्वरूप को देखना और भेद ज्ञान करना, अलग अलग करना, मैं क्रोधी हूं ऐसा एकत्व मत कर लेना। जिस ज्ञान में क्रोध, जिस ज्ञान ने क्रोध को जाना वो तो उस रूप क्रोध रूप भी हुआ, क्रोध अन्य है, ज्ञान अन्य है, एक आत्मभाव है, एक अन्य भाव है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव को भिन्न भिन्न रूप अनुभव करना और अनुभव का प्रयास करना, उसको भेद ज्ञान यानी विवेक फिटकरी कहने में आता है। समय सार में तो भेद ज्ञान की चर्चा ही चली है सभी अधिकार में। उस तरह से मोक्ष पद भी है, इस प्रकार से बंद रही शुद्ध आत्म स्वभाव से वह मोक्ष है, ऐसा कहने के पीछे कृपालु देव का बहुत बड़ा गहरा अभिप्राय है। इसलिए अभिप्राय में विशेषता है, यानी कथन में भी विशेषता है, के विश्व में मोक्ष पद को मानने वाले विविध प्रकार से मानते हैं। कोई कहेंगे कि विष्णु लोक में गए तो मोक्ष हो गया, कोई कहेंगे शिव लोक में गए तो मोक्ष हो गया, कोई कहे कि अपना अस्तित्व नाश करके ज्योति में ज्योत मिल गया तो मोक्ष हो गया। ऐसे मोक्ष की परिभाषा भी विश्व में मान्यता आस्तिक दर्शन में भी भिन्न भिन्न प्रकार की मिथ्या मान्यता है, उसके सामने अकाट्य बात रखी है। जो बात रखी है वो कैसी है? अकाट्य है। आप उसमें कोई गड़बड़ कर सकते नहीं, ऐसी परिभाषा बनाते हैं। जो ज्ञानी समर्थ पुरुष है और शासन में जो चीज सामने रखते हैं तो उनको मालूम है कि जैन शासन के सामने अन्य भी मत संप्रदाय चलते हैं, तो जो बात कहेंगे वो ऐसी कहेंगे कि जिसमें किसी को कुछ कहने की जगह रहे नहीं, अवकाश ही नहीं रहे, नो स्कोप, ऐसी बात करेंगे। उस तरह से मोक्ष की परिभाषा किया है कि आत्मा में बंधभाव क्षीण हो करके, मलिन भाव नाश हो करके, और ये नाश होने योग्य है इसलिए उससे रहित, बंधभाव रहित ऐसा जो शुद्ध आत्म स्वभाव, उस रूप परिणाम जैसा स्वभाव, उस रूप परिणाम, उस रूप मोक्ष पद है, इसी को मोक्ष कहने में आता है।
कोई स्थान नहीं है?
नहीं, वो कोई स्थान नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है कि महावीर में जाए तो मोक्ष है, वो बात भी नहीं है। मोक्ष कहो निज शुद्धता, वो तो निज शुद्धता, अपने परिणामों की शुद्धता को मोक्ष कहने में आया है। स्वभाव तो शुद्ध है ही। अब छठा पद कहते हैं, यह मोक्ष का उपाय है। ये बहुत प्रयोजनभूत विषय आया था। मोक्ष है वो तो जान लिया है, तो प्रयोजनभूत उतना है कि हमारा वो ध्येय हो जाना चाहिए, उतना ही प्रयोजन है उससे। मोक्ष को तो मोक्ष का ध्येय यानी लक्ष्य हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा मोक्ष का प्रयोजन नहीं है। अब कहते हैं कि मोक्ष का उपाय भी है, वो प्रयोजन होता है। उपाय कहो, इलाज कहो, मार्ग कहो, एक ही बात है। तो मोक्ष मार्ग भी है, मोक्ष है तो मोक्ष का मार्ग भी है। क्या कहेंगे कि जो मोक्ष है, जिस कारण से वो होता है, उसी कारण को मोक्ष का मार्ग कहने में आता है। मोक्ष मोक्ष मार्ग है, इसका फल मोक्ष है। मार्ग और मार्ग फल, इसमें मार्ग है बहुत प्रयोजन विषय है। क्यों कि हमको अनंत काल में परिभ्रमण करते हुए और विभिन्न संप्रदाय में मनुष्य होकर के जन्म पा करके विभिन्न प्रकार के धर्म साधन को प्रयोग करते हुए हमारा मोक्ष हुआ नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग नहीं हुआ था। इसलिए मोक्ष का उपाय होवे तो मोक्ष होवे न, कि मोक्ष का उपाय नहीं है तो मोक्ष भी होने वाला नहीं है। उपाय इसका फल वो है ना, इसलिए। तो अब जो उपाय है, मोक्ष का मार्ग है, ये स्वानुभूति रूप है। क्या है? यहाँ तो गुरु जो कृपालु देव कहते हैं, पहले कृपालु देव के वचन पर स्वाध्याय करके और उसको जरा विशेष रूप से विचार करेंगे।
योग्यता
तो ऐसे आएगी कि जिसको कर्म बंध से मुक्त होने की तीव्र वेदना हो जाए, तो योग्यता आ जाएगी। तीव्र वेदना मुक्त होने के होने से, परिभ्रमण के से मुक्त होने की हो जाए तो योग्यता स्वयं आएगी।
इसके बिना से पुण्य का हो जाएगा, इसके बिना से पुण्य का हो जाएगा।
हाँ, सुन करके संतुष्ट पड़ा हो जाएगा तो वेदना आएगी नहीं। हमारे यहाँ ये चर्चा चलती है आजकल कि हमको ये वेदना क्यों नहीं आती है, कि सुन सुन करके संतुष्ट हो गए इसलिए नहीं आती है। सुनते हैं, बात समझ में आती है और संतुष्ट पड़ा हो जाता है, वो प्रयोजन को अनुसरण करते नहीं है। वो बात तो थोड़ा विस्तार से लेंगे। यहाँ कहते हैं कि मोक्ष का जो उपाय है, यदि कर्मबंध मात्र हुआ करे और ऐसा ही रहे, ऐसा ही हो, तो उसकी निवृत्ति कोई भी काल में संभवित नहीं है। कर्म से समझाते हैं, प्रति समय जीव को नया नया कर्म संसार के परिणाम से बंधन हुआ ही करता है। अगर ऐसा हुआ ही करे और उसका नाश, तो उसका नाश भी कोई काल में संभवित नहीं है। लेकिन कर्म बंधते भी है नए और पुराने निर्जरते भी है, जो भोगने में आते हैं वो निर्जरते हैं। तो उसमें से ये बात नहीं है कि कर्म बनते ही रहते हैं इसलिए क्या करें, इसका नाश तो हो ही नहीं सकेगा, ऐसा होता नहीं है। रहेगा ही, कर्म बंध हुआ ही करे तो फिर मुक्त करने का अवसर कहाँ से आएगा।
तो ये साबित करता है कि हृदय कैसा भी उसमें हमारी गुण सत्ता रहती है और हमारा पुरुषार्थ निर्भर करता है।
ठीक है,
उसमें कितना
गुण, ठीक है, समय पुरुषार्थ होगा तो कर्म निर्द्रा ज्यादा होगी, आवृत्ति कम होगी, आने वाले कम होंगे, वरना छूटेंगे कम और आएंगे ज्यादा, ये बात हो जाएगी। परंतु कर्मबंध से विपरीत स्वभाव वाला ऐसा ज्ञान दर्शन समाधि वैराग्य भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष है, जो साधन के बल से कर्मबंध शिथिल होता है, उपशम को प्राप्त होता है, क्षीणपणा को प्राप्त होता है, इसलिए वो ज्ञान दर्शन संयम आदि मोक्ष पद का उपाय है। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, वो बात किया है। और उसमें सभी पद आ जाते हैं, ज्ञान विराग भक्ति सब पद आ जाते हैं। एक एक को थोड़ा विस्तार से कल के स्वाध्याय में लेंगे। तो यहाँ तक रखें।